भव कुंज बिहारी
कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज
जनवल्लभ गिरिवरधारी
गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी
जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी
गोपी जनवल्लभ
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय।
श्री श्री निताय गौर हरि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया।
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 10। कह
नो
अस्य
अस्य
कीर्तिम
कीर्तिम
न श्रृणोति
न श्रृणोति
अभिज्ञः
अभिज्ञः
यत्
यत्
विक्रमा
विक्रमा
उच्छिष्टम
उच्छिष्टम
अशेष
अशेष
भूपाः
भूपाः
लोकाः
लोकाः
सपालाः
सपालाः
उपजीवन्ति
उपजीवन्ति
कामं
कामं अद्य अपि
तत्
मे
मे
वद
वद
कर्म
कर्म
शुद्धं
शुद्धं कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
यद् विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
यद् विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
यद् विक्रमोच्छिष्टम् अशेष भूपाः
यद् विक्रमोच्छिष्टम् अशेष भूपाः
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
यद् विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
यद् विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम् कौन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञः
यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्
कह
कौन
नो
लेकिन
अस्य
इस राजा
पृथु
की
कीर्तिम
ख्याति
न श्रृणोति
नहीं सुनता
अभिज्ञः
बुद्धिमान
यत्
उसका
विक्रम
वीरता
उच्छिष्टम
जूठन
अशेष
असंख्य
भूपाः
राजा
लोकाः
लोक
सपालाह
सपालाह अपने देवताओं सहित
उपजीवन्ति
उपजीवन्ति जीवन यापन करते हैं
कामम
कामम
वांछित
वस्तुएं अद्य अपि
आज भी
तत्
तत्
वह
मैं
मुझसे
वद
वद
कृपया
कहो
कर्म
कर्म
कार्य
कार्य
शुद्धम
शुद्धम
शुभ
शुभ
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। तात्पर्य संत विदुर द्वारा पृथु महाराज के विषय में बारंबार सुनने का मंतव्य यह था कि सामान्य राजाओं तथा कार्याध्यक्षों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वे पृथु महाराज के कार्यों के विषय में सुनकर अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सकें। दुर्भाग्यवश आज के समय में कोई भी पृथु महाराज के विषय में सुनने या उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने की परवाह नहीं करता। इसीलिए विश्व का कोई भी राष्ट्र न तो सुखी है और न आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है। यद्यपि मानव जीवन का एकमात्र ध्येय एवं उद्देश्य यही है। अनुवाद दोहराइए। पृथु महाराज के कर्म
इतने महान थे
और उनकी
शासन प्रणाली
इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा
तथा विभिन्न लोकों के
देवता
उनके चरण चिन्हों पर
चलते हैं। भला ऐसा
कौन होगा
जो उनकी
कीर्तिमय कार्यों को
सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म
इतने पवित्र
तथा शुभ हैं
कि मैं उनके संबंध में
पुनः पुनः
सुनना चाहता हूँ।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी हम सब जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ में ही रहते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान भक्तों के बिना नहीं रह सकते। यद्यपि भगवान आत्मा राम है, ये एक दार्शनिक तत्व है, फिर भी भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं और अपने अंशों के साथ फिर वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अपने आनंद की वृद्धि कराना चाहते हैं। वो आनंदमयोभ्यासात, जैसे वेदांत सूत्र में कहा गया है, वो आनंदमय है सदैव, फिर भी वो अपने आनंद की वृद्धि और भी करते रहना चाहते हैं, क्योंकि हर दृष्टि से देखा जाए तो भगवान असीमित है। भगवान का हर एक गुण असीमित है, इसलिए यदि भगवान अपने आनंद की वृद्धि करना चाहें तो उसमें कोई एक दोष या विरोधाभास नहीं है। तो भगवान फिर अपने भक्तों की के रूप में अपने शक्तियों का विस्तार करते हैं और इस प्रकार से भक्तों को और भगवान को दोनों को बड़ा दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो क्योंकि अकेले में आनंद नहीं मिल सकता है अधिक, इसलिए भगवान भी अपने आप को विस्तार करते हैं। इतना ही है कि भगवान के बाहर कुछ नहीं है। जब हम साधारण व्यक्तियों की बात आती है तो हम अकेले नहीं बैठ सकते, परंतु हम किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं जो हमसे अलग है, जो हमसे बाहर है, जैसे अन्य लोगों के ऊपर या हमारे वातावरण, पेड़ों के ऊपर, कुछ हरियाली के ऊपर। कोई कहे कि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, एकांत में जाता है जंगल में, लेकिन वहाँ पेड़ों के वातावरण में रहता है ना, अन्यों के ऊपर निर्भर होता है ना। तो हम हर पल पे हमारे सुख के लिए अन्यों के ऊपर निर्भर रहते हैं, परंतु भगवान ऐसे नहीं हैं। उनके बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है वो भगवान के अंदर ही है, भगवान का ही है, भगवान की शक्ति का विस्तार ही है। इसलिए भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने आप को भगवान ऐसे विस्तार करते हैं और अपने आप से ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्यों भगवान भक्तों से अलग नहीं हो सकते, और इसलिए भगवान के नाम भी अपने भक्तों से जुड़े हुए हैं, भक्तों के नाम भी भगवान से जुड़े हुए हैं। जैसे श्री कृष्ण का एक नाम है पार्थ सारथी, क्योंकि अपने भक्त पार्थ या अर्जुन के सारथी वो बने। तो जिस प्रकार से भगवान का गुणगान करना भक्तों के लिए आवश्यक है और भक्तों को अच्छा लगता है, इससे दिव्य आनंद मिलता है, ठीक उसी प्रकार से भक्तों के भगवान के भक्तों का गुणगान करना भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि अधिक आवश्यक है, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम केवल भगवान का गुणगान करेंगे, भक्तों का नहीं करेंगे, तो ये सहजी हो जाता है। और कोई कहे मैं केवल भक्तों को मानूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा, ये मायावाद हो जाता है। दोनों साथ में चाहिए। यदि हम केवल भगवान का गुणगान करेंगे या केवल भक्तों का गुणगान करेंगे, वो अपूर्ण रहेगा। इसलिए दोनों को साथ में मिलाकर हम गुणगान करते हैं। और इस प्रकार से हमारी जो स्तुति है, हमारी प्रार्थना है, हमारी सेवा है, ये संपूर्ण हो जाती है। यदि ऐसे नहीं होता तो हम समझ सकते हैं कि रूप गोस्वामी ने गलती की होगी भक्ति की परिभाषा करते हुए। भक्ति की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में रूप गोस्वामी ने किस श्लोक के द्वारा किया है, बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अब इसका कौन अर्थ बताएंगे? अर्थ कोई बताइए शब्द भेद करके।
अन्य अभिलाषिता कोई दूसरी अभिलाषा के बिना शून्य शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म का आवरण जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, अनावृतम। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलन भक्ति उत्तम। अनुकूलेन कृष्णा, अनुकूल जो भी है कृष्ण के लिए, अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलन उसका व्यवहार करना चाहिए।
मतलब अभी सारांश में बताओ, उत्तम भक्ति क्या है?
ज्ञान और कर्म के बिना जो भगवान को अनुकूल है वो जो कार्य किए जाते हैं उसे उत्तम भक्ति कहा जाता है।
ठीक है, बहुत अच्छा दर्शन। तो अभी अनुवाद में क्या बताया आपने कि जो इनकी सेवा करते हैं
कृष्ण।
इसका मतलब ये है कि हम जब तुलसी की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, गंगा यमुना की सेवा करते हैं, तो वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण नहीं है। कहा है ना परिभाषा में कृष्ण अनुशीलन, तो कृष्ण तो तुलसी कृष्ण है क्या? गाय कृष्ण है क्या? वैष्णव कृष्ण है क्या? गंगा यमुना कृष्ण है क्या? तो इसका मतलब है कि हर्षल जो बोल रहे हो कि ये सारी चीज़ें भक्ति नहीं है, केवल कृष्ण, यहाँ तक कि विष्णु नारायण नरसिंह राम ये भी सब उनकी भी उपासना करना भक्ति नहीं है, केवल कृष्ण, बराबर। यही तात्पर्य निकलता है ना इससे, अर्थ तो यही है।
विस्तार है, बाकी सब चीजें कृष्ण
का। सही है। इसलिए जीव गोस्वामी जब टीका करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, तो कृष्ण शब्द का तात्पर्य समझाते हैं, क्योंकि कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण से बाहर कुछ नहीं है, कृष्ण से स्वतंत्र कुछ नहीं है। इसलिए जब कृष्ण भक्ति, कृष्ण अनुकूलन, अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन हम कहते हैं रूप गोस्वामी, तो जो सेवा की जाती है वो केवल श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण की ही नहीं, बल्कि जो कृष्ण के विस्तार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, उनकी सेवा की जाने पर भी उसे भक्ति हम कहते हैं, क्योंकि कृष्ण और उनके विस्तार भिन्न नहीं है, कृष्ण और राम में अंतर नहीं है, कृष्ण नरसिंह में अंतर नहीं है। इसलिए जितने भी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं वो भी कृष्ण शब्द के अंतर्गत श्रेणी में ही आते हैं, इनको हम विष्णु तत्व बोलते हैं। तो इसलिए कृष्ण की सेवा जब इसको कौन सा श्लोक बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का?
परिभाषा सूत्र।
अर्थात
वो यानी कि वो सब पूरे ग्रंथ का वो ये मूल सूत्र है।
सारे ग्रंथ का ये मूल सूत्र है भक्ति रस सिंधु, इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथ का सबसे प्रधान श्लोक जिससे कि संपूर्ण ग्रंथ की परिभाषा होती है उसे परिभाषा सूत्र कहते हैं, वो है ये श्लोक अन्याभिलाषिता शून्य। श्रीमद् भागवत का कौन सा है? ये श्रीमद् भागवत की परिभाषा श्लोक है। तो खैर, तो पहली बात तो जीव गोस्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि हम कृष्ण शब्द को इस तरह से नहीं समझेंगे तो फिर भगवान के जितने भी अवतार हैं, विस्तार है, उनकी सेवा फिर भक्ति में नहीं गिना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम गिनते हैं उनको। तो कृष्ण शब्द का तात्पर्य समझना चाहिए पहली बात, कि जितने भी उनके विस्तार हैं, अवतार हैं, वो सब कृष्ण शब्द में आ जाते हैं। और दूसरी बात फिर जीव गोस्वामी कहते हैं, यदि कृष्ण को हम केवल कृष्ण और कृष्ण के विस्तार, उनके जो अवतार हैं, वही मान लें तो फिर तुलसी सेवा, वैष्णव सेवा, गंगा सेवा, ये सब भक्ति नहीं कहलाएगी फिर। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि तदीय सेवा, जो श्री कृष्ण के तप, उनके जो संबंधित हैं, वो भी कृष्ण शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। कृष्ण के भक्त, तुलसी भी कृष्ण के भक्त हैं, गंगा यमुना भी कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव भी तो है ही कृष्ण के भक्त। इसलिए जो भी कृष्ण के भक्त हैं वो भी कृष्ण शब्द के अंतर्गत आते हैं, भक्ति की परिभाषा के दृष्टि से देखा जाए तो। समझ रहे हैं इस बात को आप? इसलिए आप तुलसी की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, इस दृष्टि से कि इनका संबंध श्री कृष्ण से है, तो फिर वो भक्ति कहलाता है। कृष्ण का संबंध नहीं देखेंगे तो फिर वो सुकृति हो जाएगी, साधारण सुकृति हो जाएगी। तो खैर, इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति, हमारे भक्ति के अंतर्गत, उत्तमा भक्ति के अंतर्गत जितना महत्वपूर्ण कृष्ण का गुणगान करना है, उतना ही महत्वपूर्ण कृष्ण से संबंधित जो भी हैं उनका गुणगान करना भी है। अब पृथु महाराज भगवान के न केवल शक्ति आवेश अवतार हैं, अवतार के श्रेणी में आते हैं, यद्यपि वो जीव हैं और साथ साथ वो बड़े भक्त भी हैं भगवान के, तो इसलिए उनका गुणगान सुनना और करना भी बहुत आवश्यक है, हमारे भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम भक्तों का गुणगान नहीं करते तो हमारे भक्ति में 50% से अधिक सब निकल ही जाता है। कितने श्लोक हैं जिनमें भक्तों का गुणगान किया जाता है। तो पृथु महाराज का गुणगान करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर विदुर जी मैत्री जी से सुने हैं विदुर जी ने कि किस प्रकार से देवताओं ने और राजाओं ने, क्षत्रियों ने पृथु महाराज का राज्याभिषेक किया, उनको राजगद्दी पर बिठाया, खूब सम्मान दिया। और अभी आगे यहाँ इस श्लोक में विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने अद्भुत कार्य कर दिखाए अपने शासन प्रणाली के, किस प्रकार से उन्होंने चलाई, उनके कार्य भी कितने महान थे। शासन प्रणाली चलाना अर्थात प्रजा पालन। ऋतु महाराज को विशेष शक्ति कौन सी मिली थी? प्रजा पालन शक्ति। तो वो शक्त्यावेश अवतार है और उनकी विशेष शक्ति है प्रजा पालन। ठीक है, तो इतनी अद्भुत थी कि आज भी लोग ऐसे, विदुर जी कहते हैं, आज भी मतलब उस समय 5000 वर्ष पहले की बात हो रही है कि और लोग उनके उनके चरण कमलों में अनुसरण करना चाहते हैं। तो गोपाल जी कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय अर्थात अभी हमारे समय में अभी ऐसे कोई किसी भी देश में ऐसे कोई नेता नहीं मिलते हैं, कोई राजा नहीं मिलते हैं जो पृथु महाराज के चरण चिन्हों में चलने का प्रयास करे। और फिर वो कहते हैं, भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूं। तो कौन से श्लोक का स्मरण हो रहा है आपको भगवान कृष्ण के संबंध में, कि भला ऐसे कौन होगा जो उनकी कीर्ति में कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। हाँ, श्लोक कौन सा है?
निवृत्त तत्सदीयमानोषदाश्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा मान विरज्जेत बिना पशु।
बहुत अच्छा, इसका अर्थ क्या है?
निवृत्त तर्शेर उपगीयमान, निवृत्त जो निवृत्त हो गया है
किस चीज से?
कृष्णा से। कृष्णा भौतिक
कृष्ण से,
कृष्णा
कृष्णा से। त्र त्र कृष्णा, कृष्णा क्या है? प्यास।
प्यास
किस चीज का? प्यास भोग, भोग का प्यास, सुख का प्यास, संसार के सुख का प्यास या भूख। जो ऐसे संसार के सुख को प्राप्त करने के प्यास और भूख से निवृत्त हो गया है, रिटायर हो गया, अभी उसको पूरे बस हो गया, अभी और नहीं चाहिए। हाँ, तो निवृत्त तर्शयर फिर
उपगीयमाना, जो तृष्णा से मुक्त है भौतिक, वो जो गाए हुए भगवान के गुणगान है, भव औषधात् श्रोत्र मनोविरामा, भव औषध, भव औषध जो जो भगवान के गुणगान है वो भव औषध है।
भव औषध मतलब
ये जो तृष्णा को बुझाते हैं।
हाँ, मतलब भव क्या है?
भव यानी संसार,
संसार औषध, संसार के बंधन, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको भव कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग ये नहीं है कि किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ दूसरा बीमार, दूसरी बीमारी हो गई। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? भव रोग। भव रोग प्रभुपाद जी भी ऐसे बताते, ये भव रोग सबसे बड़ा रोग है जिसके कारण हमें बार 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 जन्म लेना पड़ता है, बूढ़ा होना होता है, मर जाना होता है। तो ये इस भव रोग के लिए औषधि है, भव औषधास। परंतु ये किस प्रकार का औषध है? वो नाक बंद करके करके जबरदस्ती मुंह खोल के अंदर डालने वाला है औषध है? कभी कभी ऐसे होता है ना, कड़ू कड़ुए सब होते हैं औषध।
मनोविरामा,
ये किस प्रकार? भव औषध श्रोत्र
मनोविरामा,
मन अभिरामा, बड़े प्रसन्न होता है मन। जैसे कोई दवाई होती है जो बहुत मीठा होता है लेने के लिए, तो रोग दूर करने के नाम पे लोग लेते रहते हैं दवाई, क्योंकि दवाई इतना स्वादिष्ट होता है, लेते रहते हैं। तो ये इस प्रकार की दवाई है, वो ऐसे कड़वी दवाई नहीं है। कई दवाई ऐसे होते हैं ना कड़वे, एक बार लेने से बस हो जाते हैं, है ना? तो ये दवाई कैसी है? भवरोग भवौषधा श्रोत्र, श्रोत्र मतलब सुनना, क्या है?
मनोविरामा,
मन अभिरामात, अभिराम मतलब
आनंद,
आनंद देना, प्रसन्न करना मन को। राम अभी राम, राम कहाँ से आता है? रम, रम धातु, रम रमण करना, आनंद लेना। फिर आगे
कह कौन है उत्तम श्लोक, जो उत्तम श्लोक भगवान है, उत्तम श्लोक गुणानुवादात, गुण जो गुणगान सुनना नहीं चाहेगा, अनुवादात बिना पुमान विरज्येत, जो जो मनुष्य है विरज्येत
विना
विना पशु विना, जो पशु हो सकता है यानी कि अपने आप का जो पशुओं की हत्या करता है उसके अलावा और कौन हो सकता है जो उत्तम श्लोक के गुणगान सुनना नहीं चाहेगा।
तो जब ये कृष्ण कथा जो कि हमें परंपरा में ज्ञान मिलता है तो वो इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है, इतना सुखकारी है और हमारे सबसे बड़े बीमारी को दूर करता है, और फिर भी वो नहीं लोग लेंगे, कैसे हो सकता है? तो कौन है ऐसे व्यक्ति जो इस औषध को नहीं लेगा, अर्थात जो कृष्ण कथा को बारंबार बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, सिवाय पशुघ्ना, जो पशु की हत्या करता है वो। एक बार मुझे याद है हम एक जगह में थे तो हमारे साथ में, बहुत साल पहले की बात है, तो एक भक्त थे, विदेश में की बात है, तो कोई प्रचार का कार्यक्रम चल रहा था, तो फिर एक व्यक्ति कुछ जो सुनने आए थे वो कुछ प्रश्न पूछ रहे थे और वो तर्क सा हो गया, तो बातचीत हो रही थी तो मेरे साथ जो भक्त बैठे थे फिर वो हैरान हो गए उनकी बातें सुनकर, बार बार वही प्रश्न वही प्रश्न, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको स्पष्ट शब्दों में लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे, फिर भी वैसे इधर से उधर से उधर से वही बात को अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं। फिर ये भक्त जो थे उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो आप जब तक मांस खाते हो ना ये सब समझ नहीं पाओगे, बुद्धि में जाएगा नहीं अंदर आते। क्योंकि जब तक व्यक्ति ये सब खाता पीता है तो उसके अंदर वो बुद्धि रहेगी नहीं समझने के लिए, बुद्धि के स्तर पर भी व्यक्ति नहीं समझेगा, अभी हृदय के स्तर की तो समझने की बात तो दूर रही, बुद्धि के स्तर पर भी उसको बात दिमाग में बैठती नहीं है कि कैसे हो सकता है, कैसे है ये। लेकिन जिसने जिसके अंदर वो रुचि है वो अच्छी तरह से समझ सकता है और समझ लेता है पट कर, भले वो अशिक्षित भी हो, पढ़ाई दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा तक स्कूल में किया उसने, अनपढ़ है ज़्यादा, लेकिन बात पटक से जान लेता है, वो स्वीकार कर लेता है। पर उन बड़े बड़े कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर वो नहीं है श्रद्धा, वो रुचि नहीं है, नहीं जान पाएगा, उसके अंदर में बात जाएगी नहीं। इसलिए पशुघ्ना ये श्लोक कौन कहते हैं?
ये परीक्षित महाराज,
परीक्षित महाराज कहते हैं। ये भगवान का गुणगान इतना मधुर है हर दृष्टि से, कोई भी शिकायत करने के लिए कोई कारण ही नहीं है। जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो दवाई नहीं लेने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं?
कड़वा लगता है, पेट में जा नहीं रहा है, गले से उतर नहीं रहा है,
और क्या?
वैद्य के ऊपर विश्वास नहीं है,
और क्या?
इच्छा नहीं है,
मैं बीमारी नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये कुछ नहीं हुआ, बाकी सबको पता है कि उसको बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो खुद क्या मानता है कुछ नहीं। खास करके जिनकी मानसिक समस्या होती है ना, ये सबसे बड़ी समस्या उनके बारे में, सब लोग पहचानते हैं कि इसकी कोई समस्या है, या अकेला सोचता है कि मेरे सब दूसरों की समस्या मेरी नहीं है, है ना, होता है ना ऐसे। तो उसी प्रकार से ये संसार में रहते हुए भव रोग से ग्रस्त होकर व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं खुश हूँ, ये क्या दुखालम बोलते जाते हैं, सब सुखी हो ना, वो स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है कि कितने कष्ट के सागर में वो पड़ा हुआ है, वो सोचता मैं खुश हूँ। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं, ये संसार में ऐसे ही है, आप अस्पताल में किसी को मिलने जाओ और उसको मिल के भाई कैसे हो, मैं ठीक हूँ, अच्छा अच्छे हो तो हॉस्पिटल में क्यों है, है ना, तो मैं ठीक हूँ, ठीक नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ माया का सबसे बड़ा खेल ये है कि बद्ध व्यक्ति अपने आप को मुक्त समझता है, बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझता है, मूर्ख व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो ये समस्या है, ये माया का खेल है। तो खैर, अभी यहाँ पर परीक्षित महाराज के मन में आश्चर्य हो रहा है कि देखो बड़े बड़े इतने सारे वैद्य कौन हैं ये दवाई देने के लिए, स्वयं कृष्ण हैं, और इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, नारद मुनि जैसे महान ऋषि जिनके ऊपर कोई संशय नहीं कर सकता, तो ऐसे नहीं कह सकते कि वैद्य में विश्वास नहीं है। कौन ऐसे मूर्ख है जो नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी जैसे महारथियों का, महान भक्तों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और दूसरी बात, कोई कहे कि औषध बड़ा कड़वा है, ऐसा भी नहीं है, मन अभिरामा, बड़ा आनंद का ये औषध है, तो फिर क्यों लोग दवाई नहीं लेते हैं? एक ही कारण, पशुघ्ना, ये सब काट के खाने वाले लोग हैं इसीलिए। और एक श्लोक है जिसमें आत्महा कहते हैं, कौन सा श्लोक याद है? तो श्लोक पता है, बोलो। भवाप्तिम न तरेत स आत्महा। बहुत अच्छा, इसका अर्थ समझाओ भी। नृ, नृ मतलब मनुष्य, हाँ ये मनुष्य शरीर, नृदेहम आद्य मतलब अभी जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर जो अभी प्राप्त हुआ है उसके बारे में क्या? सुलभम, सुदुर्लभम मतलब विरोधाभास हो गया, ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है कि बुरा है?
सुलभ भी है और
सुलभ भी है, सुदुर्लभ भी है, कैसे?
सुलभ इसलिए है क्योंकि ये यदि भक्ति करेगी तो हम वापस बिल्कुल हम जाएंगे, और सुदुर्लभ इसलिए
ये मनुष्य देह प्राप्त कैसे होता है? मनुष्य योनि प्राप्त करना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख योनियां मनुष्य योनि है, तो कितना समय लगता है मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए? 8 लाख योनि पार कर कर करके, 80 लाख योनि पार कर 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 करके फिर मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। इसलिए सुदुर्लभम, दुर्लभ मतलब बहुत कठिन है मिलना, और सुदुर्लभ बहुत ज्यादा कठिन है। तो मनुष्य देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, फिर भी सुलभ है। सुलभ कैसे है? नहीं, नीचे नीचे वाली योनि है ये प्राप्त होना, ये सुलभ किस संदर्भ में है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत आसान है, अब ये भी बता है कि बहुत मुश्किल है, तो फिर आसान क्यों है?
उत्क्रांति से अपने आप शरीर मिलता है,
अपने आप प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए कुत्ते बिल्ली को बहुत तपस्या करनी पड़ती है कि हमको मनुष्य देह चाहिए, अपने आप क्रम से ही प्रकृति के नियम के अनुसार वो मनुष्य देह उसको प्राप्त हो जाएगा। कुछ अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं करना है, बस जीते रहो, अपने आप प्रकृति के कानून तुमको ले जाएंगे मनुष्य शरीर की ओर। तो मनुष्य देह को प्राप्त करना सुदुर्लभ है और सुलभ भी है। तो निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम फिर अप्लवम ने प्लवम सुकल्पम
गुरु कर्म धारण।
तो प्लवम सुकल्पम
प्लवम यानी नाव
नाव
प्लवम सुकल्पम पर से याद है ना
सुकल्पम
बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ।
हाँ बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ, उपयुक्त ढंग से जिस उद्देश्य के लिए चाहिए वैसे ही ठीक बनाया हुआ। तो ये मनुष्य देह क्या है, एक नाव है, एक नौका है जो बिल्कुल सही तरह से बनाया हुआ है। किस चीज के लिए बनाया हुआ है वो देखेंगे अभी। फिर
गुरु
कर्ण धारम मतलब
इस ये जो नाव है मनुष्य स्वरूपी उसका पप्पा गुरु है। गुरु है
उसका कप्तान जो है नौके का कौन है
गुरु।
गुरु कर्ण धारम फिर
मयान नवस्वतेतम तो ये जो नाव है जो मन होती उसका गुरु उसके कप्तान है, लेकिन जो नाव जा रही है समुद्र के अंदर तो मयान अनुकूल अनुकूल जो वातावरण वो अनुकूल वातावरण को ही कहते हो
कौन कह रहे हैं श्लोक?
भगवान
कृष्ण कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? उद्धव को कह रहे हैं 11वें स्कंद में। तो भगवान कहते हैं कि मय अनुकूलेन नभस्वत, मेरे जो वचन है शास्त्रों के वचन जो मेरे अनुकूल हैं वो कैसे हैं? एक जैसे कोई पवन अनुकूल रीति से नौके को ले जाता है सही दिशा में, वैसे मेरे शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं जो कि मेरे ही वाणी है। तो मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम का मतलब है कि इस मनुष्य देह को जिसके कप्तान जो प्लव है नौका है जिसके कप्तान गुरु हैं और ये चलता है आगे कैसे शास्त्रों के आधार पर जो मुझसे अनुकूल है। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम फिर इसको याद पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। पुमान मतलब मनुष्य, भवाब्धिम अर्थात भव सागर, भव हम सुन चुके हैं, अब्धि
समुद्र।
न तरेत ये मनुष्य देह प्राप्त करके जो कि एक बहुत ही उपयुक्त नाव है ये भव सागर पार करने के लिए, और जिसमें गुरु को भी प्राप्त किया जा सकता है और जिसमें शास्त्र भी उपलब्ध हैं हमें सही दिशा में ले जाने के लिए, इतना सब होने के बाद भी यदि हम गुरु को स्वीकार नहीं करते, हम शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते, मनुष्य देह के सही उद्देश्य को स्वीकार नहीं करते हैं और हम भव सागर को तैर के नहीं जाते हैं, पुमान भवाब्धिम न तरेत वो तैर के नहीं जाता है ऐसा व्यक्ति, तो क्या है आत्महा, वो अपने आत्मा का ही हत्या करने वाला है। तो जो व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं करता है वो आत्महा कहलाता है। तो क्यों ऐसा व्यक्ति, जब परीक्षित महाराज जी आगे पहले पूछते थे ना कि क्यों ऐसे है कि लोग कृष्ण कथा को नहीं लेते, क्योंकि वह प्रशुभ्न है इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो आध्यात्म ज्ञान समझ नहीं सकते। उसी प्रकार से जो आत्महा जो आत्मा की हत्या करने वाले हैं वो लोग भी नहीं समझ सकते, बिल्कुल रुचि नहीं है उनको इस बारे में। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेने वाले लोग पशुघ्न आदि होते हैं, उसी प्रकार से भक्तों के गुणगान करने में रुचि नहीं रखने वाले भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान के भक्तों के गुणगान के बिना नहीं हो सकता है। कल्पना कीजिए, यदि हम प्रहलाद का गुणगान नहीं करेंगे, ध्रुव महाराज का नहीं करेंगे, पृथु महाराज का नहीं करेंगे, पांडवों का, ब्रजवासियों का, गोपियों का गुणगान नहीं करेंगे, तो क्या भक्ति करते हम? क्या मतलब हमारे भक्ति का? ये सब भक्ति है ना। तो भागवत में जितना भगवान का वर्णन है उससे ज्यादा भक्तों का वर्णन है कि नहीं? इसलिए यहां पर विदुर जी भी वही बात कहते हैं, भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। विदुर जी को आश्चर्य होता है, अरे इतने महान कार्य करने वाले व्यक्ति और इतने बड़े भक्त इत्यादि, तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उनके बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, बड़ा आश्चर्य है। तो ये भक्तों को लगता है ऐसे, ये क्यों कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते हैं? हमको ऐसे लगता है ना, जब हम लोगों के पास जाते हैं वो भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, हम थोड़ा हैरान हो जाते हैं ना, हताश हो जाते हैं, अरे क्यों नहीं स्वीकार करता इस बात को ये। उसी तरह से भक्तों को भी, अभक्तों को भी लगता है, अरे ये लोग हमारे साथ शराब पीने क्यों नहीं आते, समझ में नहीं आता। होटल में जाके खाने के लिए क्यों नहीं आते हमारे साथ? दो दिन पहले ही एक भक्त उनसे बात कर रहे थे फोन के ऊपर, वह सरकार के इसमें बहुत ऊंचे पद पे है, बहुत ऊंचे पद पर, तो आपस में उनके श्रेणी में वो उनके पार्टी वगैरह होते हैं, समय समय पर वो मिलते हैं, तो वो अकेले थे उनकी पत्नी के साथ जो नहीं पी रहे थे, और सब लोग जानते हैं कि ये भक्त हैं, फिर भी उनको जबरदस्ती कर रहे थे। तो मुझे बता रहे थे कि ऐसे लोगों के बीच में हमको रहना पड़ता है, बोलते वो लोग जानबूझ के तो उनको हाथ पकड़ के, उनको कोई आके पकड़ के जबरदस्ती उनको करने वाले करते थे, ऐसे ऐसे मजाक मजाक में वो करते हैं उसके बीच में। और थोड़े ऐसे लोग थे जो उसमें शिकार हो गए, अभी सबके साथ में कैसे ना बोलना, ले लिया उन्होंने, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। और वो लोग बोलते थे क्या आप लोग नहीं लेते, उनको समझ में नहीं आता था ये लोग क्यों नहीं ले रहे। ये बाकी के जो लोग थे ना उनके समझ में नहीं आ रहा था, अरे क्या भगवान भगवान इसमें लेना क्या, तुम भगवान करो ना, भक्ति करो, लेकिन ये इसमें लेने में क्या समस्या तुम्हें। तो अपने अपने दिल के दुख को बोल रहे थे कि ऐसे लोगों के बीच में हमको रहना पड़ता है, ऊंचे पद में है, सब कुछ है, और वैसे धीरे वो प्रचार भी कर रहे हैं, उन्होंने जन्माष्टमी भी अपने घर में मनाया, सब लोग आए थे, सब ने आरती किया, सब कुछ, लेकिन ये पीना उनको है। उनको समझ में नहीं आता कि पीने में क्या समस्या है, ये तो जीवन है। खैर वो और उनकी पत्नी तो रहे थी, बाकी पत्नियां भी पी रहे थी। ऐसा ये हाल है आज। तो दोनों तरफ ये तर्क चलता है, अभक्तों को पता नहीं चलता है कि ये क्यों ये लोग ऐसे सब चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और भक्तों को भी लगता है अरे अभक्त कैसे है, क्या क्यों नहीं भक्त बनते ये लोग। लेकिन जो भक्तों का आश्चर्य है वो वाकई सत्य पे आधारित है। तो विदुर जी को भी आश्चर्य लग रहा है, परीक्षित महाराज को आश्चर्य लग रहा है, इसलिए पृथ्वी महाराज का गुणगान सुनना करना और अन्य भक्तों का भी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है हमारी भक्ति के लिए। हरे कृष्णा। हाँ
पशु भाग जो शब्द का वापस आते हैं तो जो चार नियम है भक्ति में तो जब नया भक्त भक्ति से जुड़ता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी एक चीज़ हो सकती है। अगर हमें एक चीज़ अगर पकड़ना है जैसे मतलब क्रमशः अगर ये सोचना है तो मतलब जब कभी भी यहाँ पे कुछ गेस्ट आता है तो
क्या करते हैं
गेस्ट आते हैं कोई
गेस्ट आते हैं
तो अभी उनको अगर चार नियमों के बारे में बताना है और हम अगर वो हमें अपनी परिस्थिति बताते हैं कि हमारी परिस्थिति ये है और ये हम इतने नियम भंग कर रहे हैं तो उनको अगर हमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कुछ बताना है कि एटलीस्ट आप ये तो ठीक है चार मतलब सपोज चार में से अगर तीन नियम भंग कर रहे जैसे सिटी में रहने वाले लोग जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते ही हैं मोस्ट ऑफ द लोग हाई रिस्क इसमें तो अब ऐसी सब चीज़ें अगर वो बता दें कि हम चार नियम में से ये चीज़ें नियम भंग कर रहे तो हमें क्या बताना चाहिए कि आप इसको
सबसे पहले उनको बताइए आप जब शुरू कीजिए क्योंकि उस समय एकदम से आप बोलेंगे ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो और भाग जाएंगे आएंगे नहीं। इसलिए उनको धीरे धीरे से लाके भक्तों के संग में अनुकूल वातावरण में लाके जब शुरू करवाना चाहिए। एक बार जब शुरू हो गया और थोड़ी कथा वाणी थोड़ी कान में जाने लगी फिर उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा फिर चार नियम का पालन क्यों करना चाहिए ये सब हो जाएगा। अभी अलग अलग व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार उसके लिए कौन सा नियम मुश्किल है पालन करना वो निर्भर रहेगा। जैसे जो कोई व्यक्ति शराब का आदि है उसके लिए शराब कठिन हो सकता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जैसे समुद्र के तट पर रहने वाले लोग मछली खाना बोले तो वो नहीं मान कर सकते है ना। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है ना? एक युवा खेलने वाला जो आदमी है उसको जाके बोले उसके लिए समस्या क्या है सबसे ज़्यादा ये है युवा छोड़ना। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग
से समझना दूसरा हृदय से समझना बुद्धि से समझना दूसरे हृदय से समझना इसमें क्या अंतर है।
बुद्धि से समझना और हृदय से समझना इसमें क्या अंतर है। जैसे मराठी में वो कहावत है ना कड़त पण वळत नाही क्या मतलब है इसका समझा रोदेश मराठी बोलते समझा
पता चल रहा है लेकिन हाँ पता चल रहा है लेकिन पालन करने में नहीं हो रहा
ठीक है और कोई तो सूरज का अर्थ है सर कहते पण वळत नाही
पता है सामना करना वो साधना वगैरह करना ये फॉलो करना अच्छा है हमारे लिए हिंदू के लिए वगैरह साधना के लिए अच्छा है मगर वो पालन करने के नया तो नहीं
ठीक है। और मनोज का क्या अर्थ है इसका
अभी हमको कपड़ा खाने से एसिडिटी होते पता है समझ में आता है क्योंकि आता ही
यहाँ किसी की बात कर रहे
हो
बराबर तो समझता है कोई बात लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं सकते या बुद्धि से समझ लेते हैं परंतु श्रद्धा नहीं होती है ना। जैसे कोई बड़े बड़े अध्यापक लोग होते हैं विश्वविद्यालय में बड़े बड़े पीएचडी आदि करके उनको बुद्धि से समझ में आता है लेकिन श्रद्धा नहीं। जैसे बॉम्बे में हमारे एक भक्त हैं, उनकी एक पुत्री थी, अभी तो बड़ी हो गई अभी, लेकिन उस समय जब वो कॉलेज में जा रही थी तो वो बीए संस्कृत पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज बीए डिग्री संस्कृत में। तो एक बार वो बोल रहे थे, जब मैं उनके घर में गया था, कि हमारी एक अध्यापिका है, वो हमको आज बोल रही थी कि ये सब शास्त्र वास्त्र है ना, ये संस्कृत तुम सीख लो क्योंकि आगे जाके नौकरी मिलेगी, लेकिन विश्वास नहीं करना, इसमें कुछ श्रद्धा रखने की बात नहीं है, ऐसे है सब, ऐसे पढ़ो इसको परीक्षा के लिए, डिग्री के लिए पढ़ लो। तो बुद्धि से सब जान समझ सकते थे, व्याकरण क्या है इसका, ये क्या वो क्या, सारे अच्छे अच्छे उत्तर दे सकते हैं परीक्षा में, परंतु श्रद्धा नहीं है, हृदय से नहीं जानते, बुद्धि से जानते हैं, विश्वास नहीं है। तो बुद्धि से जानना और हृदय से नहीं जानना, इसके दो तात्पर्य है। एक कि जानते हुए भी पालन नहीं कर पाना, श्रद्धा है परंतु पालन नहीं कर सकते, ये एक अर्थ। दूसरी बात है बुद्धि से समझना परंतु श्रद्धा ही नहीं होना। श्रद्धा हृदय की बात होती है ना, बुद्धि की बात नहीं होती, ठीक है।
महाराज आपने भक्तों की गुणगान करना चाहिए, ये स्वाभाविक है, शास्त्रों में जो आते हैं उनका तो करते ही हैं, और जो भक्त दूर रहते हैं उनका भी करते हैं, लेकिन जो भक्त पास में रहते हैं उनका करना बहुत मुश्किल है।
तो नहीं होना चाहिए,
इसको हम कैसे लांग सकते।
ये अपने आप को समझा कर कि देखो, हम जिन भक्तों के साथ में रहते हैं वो भी भगवान के शरण में आए हैं, तो बहुत दुर्लभ है, बाहर के लाखों 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 लोगों में से बिरला ऐसे कोई मिलते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, और इनके भी कितने अच्छे गुण हैं, तो उनको हमें जान लेना चाहिए। कोई मतभेद हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके कारण फिर वो नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये भक्त हैं। आध्यात्मिक बुद्धि से अपने आप को समझाते हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। ठीक है।
जैसे आपने कहा था कृष्णा किसी शब्द में उसके संबंधित जो भी तरीय सेवा भी आती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं गोकुल धाम में जो कि कृषि मुख्य है हमारे यहाँ, तो इस प्रकल्प में हम कृषि के ऊपर जोर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत बार इसको अनुभव भी किया है गोकुल धाम में, कि जब हम यहाँ के वक्त में कृषि के ऊपर बहुत जोर देते हैं, तो जो प्रसाद वितरित करता है वो भक्त अपने आप को बहुत निम्न समझता है, और वो कहता है कि मैं भी प्रकृति में जाऊँगा सेवा करने, इसको हम कैसे समझें।
नहीं, कृषि प्रधान है ये हमारा प्रकल्प अवश्य, क्योंकि कृषि नहीं करेंगे तो प्रसाद वो वितरण क्या करेंगे फिर। वितरण करने के लिए अन्न होना चाहिए, अन्न खेत से आएगा, तो इसकी प्रधानता अवश्य है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कृषि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कृषि हम किस लिए कर रहे हैं ये याद में रखना चाहिए, इसलिए करते हैं हम कृषि ताकि खाने को मिले, है कि नहीं। तो खाने के लिए मिलना है तो फिर प्रसाद किसी को बनाना है तो रसोई चाहिए, वहाँ केवल खेती करेंगे, रसोई करने वाला किचन नहीं होगा कोई, तो फिर क्या खेती का क्या उपयोग होगा। और फिर जब वो बनाएंगे रसोई घर में, फिर भगवान को अर्पण करने वाले भी कोई भक्त चाहिए, नहीं तो फिर हम भक्त होने का क्या मतलब, भगवान को अर्पण किए बिना हम कुछ खाएंगे तो उसका क्या मतलब। और जब भगवान को भोग चढ़ भी गया तो उसके बाद फिर उसका वितरण भी करना चाहिए। वितरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, हल्ला गुल्ला हो जाएगा। इसलिए सारी चीजें अपनी अपनी जगह में महत्वपूर्ण है। हर सेवा का महत्व होता है। आश्रम को साफ सुथरा रखना, स्वच्छता का जो देखभाल करते हैं उनकी भी सेवा बहुत जरूरी है। हर एक सेवा महत्वपूर्ण होती है अपने जगह में। इसका मतलब ये नहीं कि एक महत्वपूर्ण है इसलिए उसको ही करना है, बाकी किसी को करना ही नहीं। बाकी चीजें नहीं करेंगे तो खेती भी नहीं होगी आगे चल के, है ना। ये सब साथ में रहेंगे तब जाके प्रधान सेवा भी हो पाएगी, अन्य सेवा भी हो पाएंगी। वास्तव में सबसे प्रधान सेवा हमारी कौन सी है? हरे कृष्ण जप और कीर्तन और श्रवण, सबसे प्रधान सेवा ये है। इसको अनुकूल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, सात्विक वातावरण में रह के, खेती वगैरह करके। जहाँ तक सरल जीवन है, सरल जीवन में खेती सबसे महत्वपूर्ण। ऊंचा विचार है उसमें श्रवण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण। परंतु अंतिम उद्देश्य क्या है? हमको शुद्ध भक्त बनना है। केवल किसान तो नहीं बनना है ना, तो हमको खेती करनी है, गोपालन करना है। तो जो भी भक्त यहाँ सेवा करते हैं, कोई भी सेवा क्यों ना हो, वो सबका अपना अपना महत्व है। मुझे याद है बहुत साल पहले एक ब्रह्मचारी थे एक आश्रम में, तो वो पुस्तक वितरण के पीछे बहुत उनका रुचि था और एकदम कट्टरवाद थे पुस्तक वितरण के लिए। और इस तरह से प्रचार करते थे कि तुम माया में हो, यदि पुस्तक वितरण नहीं है तो पुजारी उल्लंघन करे। मैं पुजारी से हम सब जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि पूजा करने के लिए कोई नहीं, प्रसाद बनाने के लिए कोई नहीं, फिर कैसे चलेगा? पुस्तक वितरण करने वाले फिर वो खाली पेट दिन भर करेंगे? अंग्रेजी में ऐसे कहावत है कि एक सेना पेट पर चलती है, बंदूक गोलियों पर नहीं। अवश्य बंदूक गोली के बिना भी युद्ध नहीं कर सकेंगे, परंतु भोजन के बिना क्या कर सकेंगे? तो उनके लिए भोजन कौन बनाता है? उनकी भी सेवा जरूरी है कि नहीं? केवल इतना है कि ये लोग सामने हैं बस, परंतु सारी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर सेना के लिए डॉक्टर भी जरूरत है, जब वो घायल हो जाए उनको ठीक करना, उनके लिए भी चाहिए कुछ, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सारी सेवाएं हैं। हर एक को अपने अपने स्थान में समझ लेना चाहिए, हर एक का महत्व तो समझ लेना चाहिए। इसलिए सबको अलग अलग सेवाओं का अनुभव मिल रहा है। कोई प्रसाद वितरण करते हैं थोड़े समय के लिए, आगे चल के हो सकता है फिर वो खेती में जाए, फिर दूसरे खेती के करने के बाद फिर वो पुजारी सेवा करे, फिर रसोई घर में जाए। हो सकता है किसी की सेवा लंबे समय तक एक ही जगह में रहे, वो भी हो सकता है। तो जो भी हो, चाहे हम एक सेवा से दूसरी सेवा में बदले जाएं, या हम किसी एक ही सेवा में लंबे समय तक के लिए रहें, कोई बात नहीं। जो भी सेवा हमें दी जाती है वो हमें उत्साह से करना चाहिए, क्योंकि वो सब गोकुल धाम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। और प्रसाद के बारे में क्या नियम बताओ?
प्रसाद कोई वक्त आश्रम में नहीं लेना चाहिए, सभी को प्रसाद हॉल में लेना चाहिए।
कौन से हॉल में?
प्रसाद हॉल में।
देव की तेरे प्रभु ने अच्छा नियम बनाया था। रबर
प्रसाद लेते समय कोई बात न करे,
प्रसाद लेते समय कोई बात न करे। योग विज्ञान में और आयुर्वेद में भी ऐसे ही बताया गया है, शांति से प्रसाद लेना चाहिए। बहुत आवश्यक है, आप सब पालन करते हैं ना? मैं नहीं रहता हूँ तब भी होता है ना? आप सबको यदि महत्व समझ में आए तो आप खुद पालन करेंगे। केवल बताया जा रहा है इसलिए पालन करना, ये एक बात होती है, लेकिन जब खुद समझ जाते हैं क्यों करना है तब आसान हो जाता है पालन करना, है ना? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गोकुल धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।